समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात, कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इसके अलावा महानगरों की खबरों का रुख करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, वेलकम टू अ वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, as Farah told you. Also, we'll provide you metro city updates and we'll explore history of today, that is 21st of September. Well, we'll begin with the headlines first.
सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरान श्री मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री डेलावेयर में विलिंगटन में चौथे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री क्वाड समूह के अन्य नेताओं सहित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए ये समूह समान विचारधारा वाले देशों के मंच के रूप में उभरा है। अमरीकी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक से दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष अमरीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे।
Senior Aam Aadmi Party leader Aatishi will take oath as Chief Minister of Delhi today. The swearing-in ceremony will take place at the Raj Niwas, where Delhi LG V.K. Saxena will administer the oath to Aatishi and her Council of Ministers. President Draupadi Murmu has appointed Aatishi as the Chief Minister of Delhi from the date of her being sworn in. The President also cleared the appointment of 5 ministers. They are Gopal Rai, Kailash Gehlot, Saurabh Bhardwaj, Imran Hussain and Mukesh Ahlawat. Election Commission has said that 61.38% voter turnout was recorded in the first phase of assembly elections in Jammu and Kashmir held on Wednesday. The Commission said that total voter turnout comprises 63.75% male, 58.96% female and 40% third gender voters. This is the highest voter turnout in Jammu and Kashmir in the last 35 years.
और शगुन, इस बीच हरियाणा में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाहबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने भी रैलियां की। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान के जरिए लेन देन बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये 2,000 करोड़ से अधिक था। इसी अवधि के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई लेन देन भी लगभग 90 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन 200 लाख करोड़ रूपये पर पहुंच गया है।
Let's now go beyond the boundaries. In Sri Lanka, voting is underway to elect a new president. Over 17 million voters are eligible to exercise their franchise to elect the 9th executive president. The island nation is holding its first election after the 2022 economic downturn.
लेबनान स्थित आतंकी गुट हिजबुल्ला ने कल राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके में इजरायली हमले में अपने टॉप कमांडर इब्राहिम अकील के मारे जाने की पुष्टि की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दहिया क्षेत्र में हुए हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए और 66 घायल हो गए। खबरों में बताया गया है कि अकील का शव हिजबुल्ला के अलीट बल राडवन फोर्स के 7 अन्य सदस्यों के शवों के साथ प्राप्त हुआ। यह इस वर्ष बेरूत पर इसराइल पर तीसरा हमला था। लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती ने घने आबादी क्षेत्र में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह एक कथित नरसंहार है। इसराइली हमले के जवाब में हिजबुल्ला ने पश्चिमी गलीली क्षेत्र में 100 से अधिक रॉकेट दागे और उत्तरी इसराइल में एक प्रमुख खुफिया ठिकानों को भी निशाना बनाया।
Now let's look at IMD's weather update. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over east, west, northeast and south peninsular parts of the country during the next 3 days. IMD predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands and Telangana yesterday. Heavy rainfall has been forecast in Madhya Maharashtra, Konkan, Goa, Gujarat and Marathwada till 25th of this month. IMD has also predicted heavy rainfall in Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till 26th of this month. It said that hot and humid weather is likely over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today.
और शगुन मौसम के बाद बात कर लेते हैं खेलों की। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारत 3 विकेट पर 81 रन से आगे खेलेगा। भारत को अब तक कुल 308 रन की बढ़त मिल चुकी है। शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारत के पहली पारी में 376 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 149 रन पर आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविन्द्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए।
Now talking about chess, in the ongoing 45th Chess Olympiad at Budapest in Hungary, the Indian team continued their unbeaten streak, securing a 2-2 draw against Uzbekistan in the 9th round of the open section. With this, India remained at the top of the standings with 17 points. Meanwhile, in the women's section, India slipped to 2nd place with 15 points after a 2-2 draw against the USA. In the open section, all 4 Indian players including D. Gukesh, Arpa Gyananda, Arjun Erugesi and Vidit Gujarati drew their respective games. India maintains a 2-match point lead over the 2nd-placed USA, with Uzbekistan now in 3rd. In the women's section, India made a strategic switch by arresting Harika Dronavalli, moving R. Vaishali to the top board. However, Vaishali lost to Gulrukh Begum Tokhir Ranjova. In this section, Kazakhstan has surged to the top with 16 points, with just 2 rounds left to play.
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो शगुन, सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
वी विल स्टार्ट फरत विद चेन्नई। द चेन्नई साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 24 टू 26 ऑफ दिस मंथ। द फेस्टिवल फीचर्स अ साइंस एग्जीबिशन शोकेसिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व इन गिविंग हायर एजुकेशन एंड रिसर्च लाइक IGCAR, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, IIT, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी साइंस, CLRI Directorate of Medicine, Cancer Research Institute. Apart from exhibitions and science demonstrations, laser light and sound shows will also be organized for the benefit of the visitors. Staying with Chennai, IIT Madras has launched a new research center on diabetes to drive advancements in diabetes research and develop innovative technologies to address the most pressing challenges in diabetes care and associated complications. This center has been supported by generous funding from IIT Madras alumni Subramaniam Sankar. The Center of Excellence for Diabetic Research was inaugurated at the Department of Medical Sciences and Technology, IIT Madras, US Consul General Chennai and many other dignitaries. The objective of the department is to see how technology can intervene to either prevent an illness or diagnose quickly and treat the illness. Now talking about Bengaluru, the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation, BMTC, has started introducing eco-friendly buses on a gross cost contract basis to reduce air pollution in the city of Bengaluru. It operates 90 non-air-conditioned 9-meter electric buses as metro feeder services under the Bengaluru Smart City Scheme. It also operates 937 non-air-conditioned 12-meter electric buses acquired through FAME II Scheme. Under the same scheme, it will introduce another 287 electric buses into service by the end of November this year. Under the special assistance to states for capital investment from DULT funds, BMTC will add another 760 electric buses, out of which 320 will be air-conditioned 12-meter air buses. The Public Transport Corporation claims to save 51,000 litres of diesel every day by operating electric buses and hence preventing the release of 1.38 lakh kilograms of carbon dioxide emissions every day. BMTC serves over 40 lakh passengers every day in the Garden City, Bengaluru. Our next update is also from Bengaluru. The South Western Railway has operationalized Lokapur Railway Station for handling goods traffic. This will enhance freight operations in the region. The Lokapur Railway Station is located in Mudhol Taluk of Bagalkot district in Karnataka. This station will streamline freight movements, improve operational efficiency and support the growing needs of local businesses and industries, as it will provide an additional gateway for the goods transportation in the Hubli division. Due to its strategic positioning in the area, the sugarcane growers and cement industries will benefit. The station is capable of handling all kinds of goods, both inward and outward, except for petroleum, oil and lubricants, and train consignments. The freight operations will be available from the station from morning 6 a.m. to night 10 p.m. On to Hyderabad now. Telangana State Cabinet has granted legal sanctity to the Hyderabad Disaster Response and Assets Monitoring and Protection Agency, HYDRA. The Cabinet meeting, chaired by Chief Minister A. Revanth Reddy yesterday in Hyderabad, held for 3 hours, focused extensively on providing HYDRA with statutory powers to clear encroachments, besides undertaking disaster management operations across the Telangana Core Urban Region, TCUR. The state government will issue an ordinance to formalize HYDRA's powers, which will be comparable to those of municipalities, revenue and irrigation departments. HYDRA, once vested with legal authority, will serve as the sole unified agency responsible for clearing encroachments and disaster management within the TCUR, an area encompassing the GHMC region, along with parts of Hyderabad, Rangareddy and Sangareddy districts that fall within the outer ring road. The newly empowered HYDRA will have the authority to address issues related to encroachments in buffer zones, full tank levels of lakes, tanks and nalas. Revenue and Information and Public Relations Minister P. Srinivas Reddy briefed the media about the cabinet meeting. So, Farhad, these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now, Farhad will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, इस समय राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने चांदनी चौक स्थित के टाउन हॉल में कल स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। शाहदरा उत्तरी जोन में भी स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और संगीत के साथ साथ भोजन का भी लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोजन और संगीत उत्सव के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के महत्व के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल मैत्री यात्रा पर्यटक रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल के माध्यम से पर्यटक भारत और नेपाल सीमा पर स्थित धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। वहीं अगर बात की जाए भारत मंडपम की तो वहां पर इन दिनों 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया उत्सव चल रहा है और कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए निरंतर सहयोग, नवाचार और प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रणालियों को एक नया रूप दे रही हैं। श्री नड्डा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार प्रदान किए। केरल को पहला, तमिलनाडु को दूसरा और जम्मू कश्मीर को तीसरा स्थान पुरस्कृत किया गया। गुजरात को विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य नियामकों, अनुसंधान संगठनों और उपभोक्ता मामलों के विभागों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर श्री नड्डा और श्री जोशी ने भारत के खाद्य आयात अस्वीकृति चेतावनी पोर्टल FIRA सहित 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए। दोनों मंत्रियों ने दूरदर्शन में बाजरा रेसिपी शो की भी शुरूआत की और 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 भी जारी किया। और अब रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए 24 सितंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि श्री शाह नागपुर और छत्रपति में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौर के पहले दिन संभाजीनगर और फिर 25 सितंबर को नासिक और कोल्हापुर का दौरा करेंगे। बावनकुले ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्री शाह का मार्गदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा के महायुक्ति सत्तारूढ़ गठबंधन की सत्ता बरकरार रहे। वहीं महाराष्ट्र में एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना कल सुबह शाहपुर गांव के पास जालना वडोदगरी रोड पर हुई। बस चालक, 3 यात्री, ट्रक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली और मुंबई के बाद अब शगुन रुक कर लेते हैं कोलकाता का। आयकर कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना पर लौटने की अपील की है। फेडरेशन के 32वें प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन कल कोलकाता में हुआ। फेडरेशन के अध्यक्ष एमएस वेंकटेशन ने कहा है कि वे पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं। सम्मेलन 24 सितंबर तक चलेगा। महासचिव सुशांत चक्रवर्ती ने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए भारत भर से 260 प्रतिनिधि यहां आए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात करें तो दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तो थी बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ मुंबई और कोलकाता के मौसम की। शगुन, क्या है चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम?
First, Farhat, let's talk about Chennai. It is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 28 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। तो आज जो है वो है विश्व अल्जाइमर दिवस। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। ये दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्वभर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों और इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगियों को भी न भूलना है।
Yes, Farah, today it's also International Day of Peace.
Jee.
And this year, the year 2024, marks the 25th anniversary of the United Nations General Assembly's adoption of the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace. The International Day of Peace was established in the year 1981 by the United Nations General Assembly. Two decades later, in the year 2001, the General Assembly unanimously voted to designate the day as a period of non-violence and ceasefire. And if we talk about this year's theme, it's cultivating a culture of peace. And also, if we talk about a bit more about the declaration, the United Nations most inclusive body recognized that peace not only is the absence of conflict, but also requires a positive, dynamic participatory process where dialogue is encouraged and conflicts are solved in a spirit of mutual understanding and cooperation. In a world with rising geopolitical tensions and protracted conflicts, there has never been a better time to remember how the United Nations General Assembly came together in the year 1999 to lay out the values needed for a culture of peace. And these include, namely, respect for life, human rights and fundamental freedoms, the promotion of non-violence through education, dialogue and cooperation, and also commitment to peaceful settlement of conflicts.
जी शगुन, हमने विश्व अल्जाइमर दिवस की बात की, विश्व शांति दिवस की बात की, और अब बात कर लेते हैं विश्व आभार दिवस की। ये प्रत्येक वर्ष 31 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन हमें उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करने का मौका देता है जिन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने में अपना योगदान दिया। विश्व आभार दिवस निजी और संस्थागत दोनों तौर पर मनाया जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके काम की तारीफ हो। ऐसे में विश्व आभार दिवस से अच्छा दिन और क्या हो सकता है?
फरत, ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू एंड वी शुड बी रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन वी मीट एवरी डे एंड वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द वर्क दैट इज प्रोवाइडेड टू अस एंड द सर्विसेज ऑल्सो।
जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, याद कर लेते हैं सन 1815 की बात कर लेते हैं। आज ही के दिन किंग विलियम प्रथम ने ब्रुसेल्स में शपथ ली थी।
Also going a bit back, in the year 1746, French Expeditionary Army occupied Labourdonnais and Duplay, Madras.
1885 की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड के लोगों ने चुनावों में मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया।
In 1857, Bahadur Shah Zafar too surrendered against the British troops.
1942 में आज ही के दिन बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने अपनी पहली उड़ान भरी.
In the year 1945, British promised India independence.
1964 में माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की.
In 1959, 600 Indian Dutch immigrated to US.
और 1966 में मिहिर सेन ने बास्फोरस चैनल तैरकर पार किया.
In the year 1984, National Bureau of Animal Genetic Resources and National Institute of Animal Genetics were set up. These institutes were initially located in the campus of Southern Regional Station of National Dairy Research Institute, Bangalore. They were then shifted to Karnal in July 1985. In the year 1994 now, outbreak of pneumonic plague in Surat emerged in Surat, Gujarat. In the year 1997, Mahesh Bhupathi won a cliffhanger as India clinched Davis Cup World Group playoff tie against Chile 3-2 in Delhi. And in the year 2001, University of Roorkee became India's seventh Indian Institute of Technology, renamed as IIT Roorkee.
जी शगुन और अब इतिहास के बाद याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री अज़रा की. उनके अभिनय से सजी फिल्मों की संख्या भले ही कम है लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की उनके अभिनय प्रतिभा का परिचय देने के लिए पर्याप्त है. अभिनेत्री अज़रा को फिल्म मदर इंडिया, गंगा, जमुना और जंगली के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है. साल 1958 में अज़रा की फिल्म टैक्सी 555 प्रदर्शित हुई. प्रदीप कुमार और शकीला की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म में वो सहनायिका नजर आई. 1969 में बनी फिल्म घर घर की बात में वो नायिका बनी. 1960 में अज़रा की दो फिल्में प्रदर्शित हुई जिनमें से एक थी फिल्मिस्तान के बैनर में बनी बाबर और दूसरी फिल्मिस्तान से अलग हुए शशधर मुखर्जी के बैनर फिल्मालय की लव इन शिमला. फिल्मालय इनके बैनर में इससे पहले दिल देके देखो और हम हिंदुस्तानी भी बन चुकी थी.
Also, we are remembering Walter Scott, novelist, poet, historian and biographer who is often considered both the inventor and greatest practitioner of the historical novel. At the age 25, he published his first work, The Chase and William and Helen. It's interesting to note here that Scott became an instant bestseller with historical narrative poems like The Lay of the Last Minstrel, followed by The Lady of the Lake and The Lord of the Isle. He also wrote immensely successful historical novels such as The Heart of Midlothian, Rob Roy, The Antiquary and Guy Mannering.
और आज के दिन जन्म हुआ था अन्नपूर्णा आनंद वर्मा. हास्य लेखकों में जो अग्रणी रहे उनके हास्य सिर्फ हास्य ही नहीं बल्कि कोई न कोई सामाजिक मुद्दा उठाते हुए गढ़े गए. उनकी कहानियां हल्के फुल्के लहजे में बड़ी बात कहने का हुनर जानती थी. वर्मा ने 22 साल की उम्र में साहित्य की दुनिया में कदम रखा. हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ हास्य साहित्य को ऊंचा उठाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. 4 दिसंबर 1962 में 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका पहला निबंध खोपड़ी है जिसे मतनवाला में प्रकाशित किया गया. गौरतलब है कि मतनवाला हिंदी की प्रमुख व्यंग्य पत्रिका रही जिसका पहला प्रकाशन साल 1923 में कोलकाता से हुआ जो कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका थी. उनकी अधिकतर कहानियों में काशी को चित्रित किया गया. वो लिखते बहुत कम थे लेकिन उन्होंने प्रमुख तौर पर कहानियां ही लिखी. उनकी अधिकतर कहानियां समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य है जिनके माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया. वर्मा की प्रकाशित रचनाएं मयनमूर, मेरी हजामत, मंगलमूद, मगन रहु चोला, महाकवि चच्चा और पंडित विलासी मिश्र आदि हैं. वर्मा जी की कहानी अकबरी लोटा को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली. ये एक हास्य व्यंग्य है. कहानी आपदा में भी अवसर की तलाश करती नजर आती है और संदेश भी यही देती है कि मनुष्य यदि स्वयं को संयमित और शांत रखे तो बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने में कामयाब हो सकता है. ये बेहद मजेदार कहानी है. कहानी की भाषा आम बोलचाल की भाषा रही और कुछ जगहों पर अंग्रेजी के शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ.
Well, we are also remembering Tarachand Bajpayee, Indian film producer. He has produced many Hindi films from the 1960s to the 1980s. He founded Rajshri Productions, which continues to produce films even today. Well, some of the notable films produced by him are also Dosti, Jeevan Mrityu, Upahar, Piya Ka Ghar, Saudagar, Geet Gaata Chal, and the song that we were listening from this film only, Tapasya, Chit Chor, and many more. And it was really difficult to choose songs from these films, but we did the difficult work, so here is the medley.
Tera Meera Saath Rahe
और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, संगीतकार, भक्ति संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान जितेंद्र अभिषेकी का। उन्हें मराठी थिएटर संगीत के उद्वारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की ये प्रस्तुति।
कोश माझा प्रिय करा लापोसवा हे सुरानो चंद्रभा
We are also remembering Benjamin Graham, financial analyst, investor and professor. He is widely known as the father of value investing. He wrote two of the discipline's founding texts, Security Analysis with David Dodd and The Intelligent Investor. His investment philosophy stressed independent thinking, emotional detachment and careful security analysis, emphasizing the importance of distinguishing the price of a stock from the value of its underlying business. Also, we are remembering Jacqueline Susan, novelist and actress, talking about her novel Valley of the Dolls. It is one of the best-selling books in publishing history. With her two subsequent works, The Love Machine and Once Is Not Enough, she became the first author to have three top novels, the New York Times bestseller list consecutively.
और आज आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता रामानुज प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है। सन 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने का कार्य किया। सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। वे कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्य नारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे भी थे।
Now let's talk about musician Raymond Boz Burrell. Originally a vocalist and guitarist, he is best known for being the vocalist and bassist of King Crimson and the original bassist of Bad Company, which was formed in the year 1973. And listeners, for you we have the song I Shall Be Released, sung by him, and also he plays the guitar in it. Also remembering H.G. Wells, today it's his birth anniversary. English writer, prolific in many genres. He wrote more than 50 novels and dozens of short stories. His non-fiction output included works of social commentary, politics, history, popular science. His most notable science fiction works include The Time Machine, which was his first novel, The Invisible Man, The War of the Worlds.
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को किसी वजह से नहीं सुन पाए हैं और दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर।
Also listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thank you so much listeners for tuning in. We hope you have a superb day.
Namaskar.